ओम शांति। पश्चिम के एक लेखक ने अपने जीवन के संस्मरण में अपनी मां के विषय में एक लेख कभी लिखा था, जिसका नाम था The 8 Lies of My Mom, मेरी मां के 8 झूठ। उसने लिखा कि जब मैं बहुत छोटा था, घर बहुत गरीब था, घर में कुछ भी नहीं था, घर की हालत बहुत खराब थी, और जब माँ मुझे भोजन कराती थी और मेरी थाली में चावल डालती थी तो मैं कहता था, माँ आप अपने लिए भी रखो। तो माँ कहती थी कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसने लिखा, ये मेरी माँ का पहला झूठ था। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और फिर स्कूल जाने लगा तो भोजन में मेरी माँ मुझे बहुत सारी चीजें देती थी। उसमें उसने वर्णन किया कि अपने हिस्से का सूप जो वो बनाती थी वो भी मुझे देती थी। मैं उसको कहता था, माँ तुम भी थोड़ा सा ले लो, तो वो कहती थी, नहीं बेटा मुझे सूप बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने लिखा, ये मेरी माँ का दूसरा झूठ था। फिर मैं और बड़ा हुआ और स्कूल में एग्जाम होती थी, पढ़ाई पढ़ता था, तो जहां एग्जाम होती थी वहां पर मेरी माँ आ जाया करती थी और 3 घंटा तक एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मेरा इंतजार करती, और जैसे ही बेल बजती और मैं नीचे आता तो वो मेरे लिए चाय लाती और मुझे चाय पिलाती। मैं उसको कहता, माँ तुम भी थोड़ा सा चाय पी लो, तो वो कहती थी कि मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है। लेखक ने लिखा, यह मेरी मां का तीसरा झूठ था। उसने लिखा कि मैं पढ़ाई करता था, रातों को जागता था और फिर सो जाता था, पर तब जब उठता था तो देखता था कि मेरी मां कुछ काम कर रही है, कुछ किसी मैचस्टिक कंपनी में वो थी और वो तीलियां उसे जोड़नी होती थी, बनानी होती थी। तो मैं माँ को कहता था कि तुम सो जाओ ना, क्योंकि कल तुम्हें जल्दी ही काम पर जाना है, अब तक जागी हुई हो। तो माँ कहती थी, बेटा तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आती और मैं थकी नहीं हूं। तो लेखक ने लिखा, ये मेरी माँ का चौथा झूठ था। फिर उसने लिखा कि मेरे पिताजी बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई और मेरी माँ अकेली पड़ गई और घर का कोई सहारा नहीं था। तो पड़ोसी आए और पड़ोसियों ने माँ को समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें कोई सहारा मिल जाए। तो मेरी मां ने कहा, मुझे किसी प्रेम की आवश्यकता नहीं और ना ही किसी सहारे की। पांचवा झूठ। फिर मैं और बड़ा हुआ और फिर मुझे जॉब मिल गई, और जब जॉब मिल गई तो मैं घर में पैसे भेजता था, कहीं और रहने चला गया, परंतु फिर भी मेरी मां बाजार में जा जाकर कुछ सब्जियां बेचा करती थी और मैं उसको कैसा कहता था कि क्या मैं और पैसे भेजूं, तो माँ कहती थी, कुछ भी मत भेजो क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। लेखक ने लिखा ये मेरी माँ का एक और झूठ था। फिर उसने लिखा कि मुझे मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री मिल गई और मैं गल्फ कंट्रीज में चला गया और वहां पर जीवन बहुत सुखदायी था, परंतु मेरी माँ वही थी, उसी झोपड़े में रहती थी जहां मैं पला बड़ा था। और मैंने माँ से कहा कि अब तुम मेरे पास आ जाओ, यहां पर बहुत सुख है, सुविधा है। तो माँ ने कहा कि मैं इसी तरह के जीवन जीने की आदी हूं और मुझे यही अच्छा लगता है। लेखक ने लिखा यह मेरी माँ का सातवां झूठ था। फिर उसने लिखा कि मेरी माँ बीमार पड़ गई, उसे कैंसर हो गया, फिर उसका ऑपरेशन किया गया, अब मरणासन्न थी, अंतिम घड़ियां गिन रही थी, वेदना असह्य थी, श्वास फूल रहा था, सारे शरीर में पीड़ा थी। और मैंने अपनी माँ से कहा कि आप कैसे हो, क्या आपको दर्द हो रहा है? तो माँ ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है। और लेखक ने लिखा इतना कहकर मेरी माँ ने आंखें बंद कर ली और ये उसका आठवां झूठ था। इस तरह से उस लेखक ने अपने माँ के विषय में लिखा। The Eight Lies of My Mom, विश्व भर में आज के दिन माताओं को याद किया जाता है। आज मदर्स डे है, मातृत्व दिवस। एक माँ का जिस तरह प्रेम होता है, आज सुबह की व्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, वैसे शक्ति रूपा माँ तुम बन जाओ। माँ क्या करती है? पालना करती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, उदाहरण दिया बाबा ने, जब उनकी पालना की जाती है, पालना दी जाती है, तो वो क्या होते हैं? खुश होते हैं। वैसे तुम भी जगत माता बन जाओ, विश्व माँ बन जाओ। शक्तियों का गायन माँ के रूप में है। बाहर आंधी है, बाहर तूफान है, बाहर बिजलियों की गड़गड़ाहट है, बाहर बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है, परंतु माँ जागती नहीं, सोई रहती है। परंतु जैसे ही उसका बेटा, उसका छोटा सा बालक रोने लगता है या आवाज करता है या सोते हुए जाग जाता है, तो अचानक माँ जाग जाती है। आंधी तूफान उसे नहीं जगाता, पर कौन जगा देता है? उसके बेटे की आवाज। क्यों? क्यों जगाते हैं? कोई अदृश्य धागा जोड़े हुए है प्रेम का। परंतु माँ और मातृत्व, इसमें अंतर है। माँ तो कई बन सकते हैं, शरीर से शरीरों को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु मातृत्व बहुत ऊंची अवस्था है। और जगत मातृत्व, जगत माता, जगत जननी, जगन माता बनना केवल स्त्रियों का काम नहीं, परंतु हर आत्मा को बनना है। जैसे माँ प्रेम के धागे से अपने एक बच्चे से या अपने जितने बच्चे हैं उनसे जुड़ी रहती है, उसी तरह जो जगत माता है, जो विश्व माता है, जो शक्ति रूपा माँ है, उसे एक व्यक्ति की नहीं, एक परिवार की नहीं, एक समाज की नहीं, एक राज्य की नहीं, एक राष्ट्र की नहीं, वरन सकल जगत की पालना करनी है। तो ऐसा ही प्रेम उसे संपूर्ण विश्व के प्रति होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, शक्तियों का गायन माँ के रूप में है, तो तुम भी शक्ति रूपा माँ बन जाओ। पालना ली है, अब पालना दो। प्रभु पालना में हम चल रहे हैं, प्रभु पालना की दृष्टि हमें मिल रही है, प्रभु पालना में हम हैं। तुम केवल मैसेंजर नहीं, परंतु माँ हो। तो चाहे पुरुष हो या स्त्री, माँ का संबंध स्त्री होने से नहीं है, माँ का मातृत्व का संबंध स्त्री होने से नहीं, परंतु संपूर्ण जगत के प्रति वैसा निस्वार्थ प्रेम पालना देनी है। बहुत ले चुके अब तो आज की अव्यक्त मुरली कौन किसको देख रहा है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको देख रहा है? बाप बच्चों को। शक्तियों का सागर। हमेशा बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बाप, आज क्या कहा? शक्तियों का सागर। ये मुरली मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से मुलाकात के समय की है, और जब भी कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाले जाते हैं, अर्थात उस मीटिंग के, उस संगोष्ठी के, उस परिसंवाद के कुछ मुख्य घटक, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उन्हें टाइप किया जाता है और फिर सब डिपार्टमेंट में सर्कुलेट किया जाता है। ऐसा ही करते हैं ना कोई भी मीटिंग में, ताकि जो मीटिंग में एब्सेंट है, जो आए नहीं है, नदारद है, उनको भी पता चल जाए इस मीटिंग में ये 10 बातें की चर्चा हुई, और नीचे लिखा भी रहता है कि तुम इसमें नहीं थे, एपोलोजीज, जो जो नहीं थे उनके नाम होते हैं वहां पर। तो ये भी एक मीटिंग, भगवान के मिलन की मीटिंग, और इस मीटिंग में भी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण घटक बिंदु, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम निकालेंगे इस मुरली से। ऐसे 14 बिंदु इस मुरली से, ऐसे 14 पॉइंट्स, 14 घटक, 14 मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ गॉड विथ हिज चिल्ड्रन। भगवान धरा पर आया, उसने मीटिंग की, और उसमें से जो जो शायद नहीं आए होंगे उस मीटिंग में, उनके लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का एक एक पॉइंट केवल एक एक शब्दों का हम लेंगे, एक पॉइंट केवल एक शब्द का, और जैसे जैसे हम सुनाते जाएंगे एक एक पॉइंट अपने मानस पटल पर अंकित करते जाना है। जैसे जैसे सुनते जाएंगे वो एक एक पॉइंट स्वर्ण अक्षरों में मन के आकाश में लिखना है। डायरिया बहुत भर दी, उस दिन कहा था बाबा ने दिल में लिखो, दिल में नोट करो, डायरियों का लिखा हुआ डायरियों में रह जाएगा, इसके लिए डायरियों में कोई नहीं लिखेगा, डायरी बंद, सीधा बुद्धि रूपी डायरी पर लिखना है, क्योंकि जब लिखने लगते हैं तो बुद्धि वहां पर भी बढ़ जाती है और जो लिखा हुआ है वो बंद हो जाता है। और फिर बाद में पूछा जाए तो मन कहता है डायरी में है, और मन कहता है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, परंतु वो समय भी तो नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ तो कल दूसरी आ जाएगी। तरावटी माल, वखर, चौक, चीनी, सबसे पहला बिंदु है त्रिशूल, सबसे पहला बिंदु त्रिशूल। कौन सा त्रिशूल? कौन सा त्रिशूल? शक्तियों का सागर किसको देख रहा है? शक्ति सेना को देख रहा है। शक्ति सेना के मस्तक पर क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति। कौन सी त्रिमूर्ति स्मृति? बाप, दादा और मैं। मैं कौन? मैं कौन? मैं आत्मा। श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। तो ये पहला त्रिशूल हुआ। अभी ज्ञान के ऐसे 84 त्रिशूल कौन कौन से है वो बताना है आप सबको। ये तो एक हुआ खाली जो मुरली में आया है। कितने बताने हैं? 84 त्रिशूल, 84 ट्राइडेंट्स ऑफ नॉलेज। अगर ये त्रिशूल बुद्धि में है, अगर इस स्मृति स्वरूप में है, तो क्या हो जाएगा? तपस्वी से महातपस्वी हो जाएंगे, सहज योगी से श्रेष्ठ योगी हो जाएंगे, और भाषण मूर्त, सेवाधारी मूर्त, मास्टर शिक्षक मूर्त से साक्षात्कार मूर्त हो जाएंगे। क्या याद रखने से? केवल 3 चीजें याद रखने से। बाप कौन? शक्तियों का सागर। दादा कौन? और मैं कौन? जैसे मंदिरों में प्रतिमा का उदाहरण दिया, शिव की प्रतिमा के साथ कहां कहां मनुष्य का आकार भी लगाते हैं, कंबाइंड स्वरूप, वैसे तुम इस त्रिशूल को याद रखो, इस त्रिमूर्ति को याद रखो, इस त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप में रहो, तो सहज साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो एक त्रिशूल कौन सा हुआ? बाप, दादा और मैं। अभी बोलना चालू करो, कौन कौन से हैं? अरे ये नहीं, साकारी, आकारी, निराकारी, स्थूल वचन, सूक्ष्म वचन, निराकारी, मूल वचन, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। इन सारे त्रिशूलों में से कोई भी एक त्रिशूल ले लो और उसके स्मृति स्वरूप हो जाओ तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। बोलते जाओ। निमित्त निर्माण निर्मल। अगला, त्याग तपस्या सेवा। भूत वर्तमान भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य, आज कल और आज, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ज्ञान भक्ति वैराग, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति कृति, सुखधाम सुखधाम शांतिधाम और दुखधाम। क्या क्या? तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान योग सेवा, ज्ञान त्याग तपस्या सेवा। 4 नहीं बताने हैं, 3 वाला बताना है। समय श्वास संकल्प। बोलते जाओ। बाबा ने जो मुरलियों में बोला है वो बोलना है। आदि मध्य अंत, स्थापना पालना विनाश, जो हो गया है वो नहीं बोलना है। मन बुद्धि संस्कार, बाप टीचर सद्गुरु, मन वचन कर्म हो गया, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, एसी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, खाना पीना सोना और सतो रजो तमो और सत्यम शिवम सुंदरम और बोलते जाओ त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ और ब्राह्मण फरिश्ता देवता और महात्वी घोड़ेस्वार प्यादे और तीन बिंदी, ठीक है तीन बिंदी और चलाओ बुद्धि के घोड़े और बोलो मात पिता और मात पिता बच्चे और पवित्रता सुख शांति और ज्ञान नहीं चार नहीं बताने हैं तीन बताने हैं ज्ञान योग धारणा नहीं वो चार है शिव बाबा और नाम मान शान नहीं नहीं ये थोड़ा अलग हो गया और चार नहीं बताने तीन बताने योगी भोगी और तीसरा क्या बनाया योगी सहयोगी प्रयोगी और भक्ति साकारी आकारी निराकारी धैर्यता नम्रता मधुरता निराकारी निर्विकारी निरंकारी सिंपल सैंपल एग्जाम्पल चलती कला चढ़ती कला उड़ती कला देहभान देह अभिमान देह अहंकार दृष्टि वृत्ति कृति तन मन धन आदि मध्य अंत निमित्त निर्माण निर्मल लगाव झुकाव टकराव आदि व्याधि उपाधि बाप टीचर सदगुरु मनसा वाचा कर्मणा भिक्षा दान भीख दानी महादानी वरदानी त्यागी महात्यागी सर्वंश त्यागी भक्ति ज्ञान वैराग त्याग तपस्या सेवा ज्ञान गुण शक्तियां स्थापना पालना विनाश मन बुद्धि संस्कार त्रिमूर्ति झाड़ और गोला परमत मनमत श्रीमत भूल अवज्ञा गफलत निंदा ग्लानी डिसर्विस शिक्षा श्रीमत सावधानी ब्रह्मा विष्णु शंकर मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सुस्ती आलस अलबेलापन थकावट सुस्ती नींद अलंकारी अधिकारी सत्कारी स्नेही सहयोगी सहयोगी समान संपन्न संपूर्ण ताज तख्त और तिलक दाता विधाता वरदाता अकाल तक दिल तक राजाई तक खुराक खुशी खजाना नॉलेजफुल पावरफुल ब्लिसफुल ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे लकी सितारे उम्मीदों के सितारे सफलता के सितारे पांडव कौरव और यादव अचानक एवर रेडी और बहुत काल हाइएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट इफेक्ट डिफेक्ट परफेक्ट सर्विसेबल सेंसिबल इसेंसफुल लौकिक अलौकिक और पारलौकिक परिस्थिति समस्या विघ्न योग युक्त युक्ति युक्त बंधन मुक्त क्वेश्चन करेक्शन कोनोटेशन कर्म अकर्म विकर्म आज्ञाकारी वफादार और फरमान बरदार ऐसे ढेर सारे हैं योगी प्रयोगी सुख शांति पवित्रता हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जादूगर सौदागर रत्नागर हियर नो ई विल सी नो ई विल टोली बोली और होली योग योग याद निष्ठा शिव जयंती गीता जयंती और कृष्ण जयंती पढ़ाई प्यार पालना 84 है इसको 108 बना देना ठीक है तो सबसे पहला है त्रिशूल इस मीटिंग का सबसे पहला सूत्र है त्रिशूल ज्ञान की तीन तीन बातें जो भी आती है मुरली में उन्हें नोट करना है आज तीन बताई स्वयं को याद करना है ब्रह्मा को याद करना है और शिव को याद करना है तो क्या बन जाएंगे साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे तपस्वी हो महातपस्वी बन जाओगे सहज योगी हो क्या बन जाओगे श्रेष्ठ योगी बन जाओगे केवल भाषण मूर्त नहीं केवल सेवाधारी मूर्त नहीं केवल मास्टर शिक्षक नहीं परंतु साक्षात्कार मूर्त तो ये सबसे पहला सूत्र है क्या त्रिशूल दूसरा है लहर लहर तरंग हिलोर वेव। बाबा ने प्रश्न पूछा है, किस लहर में हो? सेवा की लहर में हो, तपस्या की लहर में हो, पवित्रता की लहर में हो, पुरुषार्थ की लहर में हो, पढ़ाई की लहर में हो। पांच प्रकार की लहर बनाई, इसमें से तुम किस लहर में हो? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, सहज योगी कहते हो, कहीं ये सहज शब्द गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे हो? सहज योगी है। अगर सहज योगी शब्द गलत हाथों में पड़ जाए तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। फिर हर बात में सहज, यहां हर बात में सहज अर्थात आलस, अलबेलापन, गफलत, गलतियां, भूले, क्योंकि हम सहज योगी हैं। कभी भी उठो, कभी भी कुछ करो, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, पड़ी तो पड़ी मुरली, नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी। उस दिन क्या था, बीमार हो तो क्या, डोली में बैठ के लेके आओ मुरली के लिए। कौन सी लहर मेरे अंदर चालू है? पवित्रता की, तपस्या की, सेवा की, पढ़ाई की, पुरुषार्थ की, या फिर ये सब लहर छोड़कर कोई और ही लहर चल रही है, अलबेलेपन की, आलस की, अपवित्रता की, गफलत की, भटकने की। भगवान मिल गया फिर भी भटकना जारी है, क्या उस लहर में तो नहीं चली रहे? जैसे वो कोलू का बैल होता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, सुबह भी वही था, शाम को भी वही, कल भी वही थे, आज भी वही, कल जो पवित्रता थी की अवस्था आज भी वही है, उन्नति नहीं हुई है। कल जो पुरुषार्थ था आज भी वही चल रहा है, उन्नति नहीं हुई है। कल जो धारणाएं थी आज भी वही या उससे नीचे, बड़ी नहीं है। तो हमारी गति भी उस बैल की तरह है, आवाजें हो रही है, घानी का आवाज, तेल का आवाज, और हम घूम रहे हैं बस, गोल 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 गोल, किसी एक संस्कार, किसी एक संबंध, कोई एक विकार, कोई एक आदत, कोई एक वासना जो पकड़े हुए है और घुमा रही है गोल 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 गोल। कौन सी लहर मेरे अंदर चालू है? निद्रा की, बेहोशी की, विकारों की, वासनाओं की, क्या चल रहा है? स्वयं को देखना है। तो इस मीटिंग का दूसरा सूत्र है लहर। तीसरा सूत्र आंख, पहचान की आंख। संसार की आत्माएं अब सुनना नहीं चाहती, सुना बहुत लिया, क्या करना चाहती है? अनुभव। जिनको तुम सुना रहे हो वो एक एक को यदि स्टेज पर बुला लो तो तुमसे ज्यादा सुनाएंगी। सुनाने वाले, सुनने वाले जो है वो एक एक समर्थ है सुनाने में, पर केवल सुनाने वाला नहीं बनना है, क्या बनना है? अनुभव कराना है, आत्माओं को अनुभव कराना। साक्षात्कार अर्थात अनुभव अर्थात साक्षात्कार समान ही कहा बाबा ने। आत्माओं को बहुत ज्ञान सुनने की इच्छा नहीं है, थक चुकी है। पॉइंट्स बहुत नहीं सुनाओ, क्या करो? पॉइंट ऑफ लाइट देखे, क्या अनुभव हो कि बाप की झलक हमको मिल गई, क्या अनुभव हो हमने देखा, हमने पाया, अनुभव हो जाए। और जो आत्मा को अनुभव हो जाए, एक वो है जो सुनते हैं और प्रभावित होकर जाते, एक वो है जो प्रेम वाले, एक वो है जिनको अनुभव हो जाता है, जिसको एक सेकंड भी अनुभव हो गया वो, उसको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खिंच खिंच कर आएगा, वो चाहे यहां से चला भी जाए, परंतु वो एक सेकंड का अनुभव उसे खींचेगा, कशिश करेगा और एक दिन खिंच कर आएगा। आत्माओं को अनुभव करा दो। कौन है तुम? कौन हो तुम? क्या हो तुम? उनकी प्यास अनुभव की है। ज्ञान तो वो बहुत पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इसके लिए बाबा ने क्या कहा, साक्षात्कार मूर्त। बोल तो तुम बहुत अच्छे रहे हो, परंतु कोई ये ना कहे कि ये स्पीकर बहुत अच्छे है। खाली इतनी महिमा? बाबा कहते नहीं, तुम जब बोलो तो ऐसा लगे, कैसा लगे, जैसे कोई अलौकिक शक्ति बोल रही है। कोई दैवी शक्ति, ईश्वरीय ओज और ईश्वरीय तेज है वहां पर, शब्द शब्द में प्यूरिटी के प्रकंपन हो, शब्द शब्द जो निकल रहा है प्रभु प्रेम की गहराई से निकल रहा है, ज्ञान को ऐसा समाया है हृदय में, नस नस में, उससे उस गहराई से वो शब्द निकल रहे हैं, तो केवल पॉइंट नहीं सुनाओ परंतु आत्माओं को पॉइंट ऑफ लाइट दिखे। तुम्हारे जब शब्द आंख किसी के कानों पर पड़े तो ऐसा ना हो कि उनको लगे कोई अच्छा स्पीकर बोल रहा है परंतु कोई ऋषि बोल रहा है। जन्म जन्म की तपस्या एकत्र हुई है और वो आवाज आ रही है, ऐसे अनुभवी मूर्त। खुद अनुभवी बनो और दूसरों को अनुभव कराओ, तब उनकी पहचान की आंख खुलेगी। क्या होगा? तब पहचान की आंख खुलेगी। केवल रटा रटाया नहीं, केवल पढ़कर नहीं, केवल याद किया हुआ नहीं, इसके बाद ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, परंतु तुम्हारे बोल अनुभव युक्त हो, चिंतन के हो, ईश्वरीय प्रेम के हो, पवित्रता के हो। तो तीसरा बिंदु कौन सा है? पहचान की आंख। चौथा है, चार लहरों की रेस करो। क्या करो? चार लहरों की रेस। अब आवश्यकता इसकी है। पहली लहर है महातपस्वी बनने की, दूसरी लहर है श्रेष्ठ योगी बनने की, तीसरी लहर है रूहानियत की, चौथी लहर है साक्षात्कार मूर्त की। तो स्वयं को योगी बनाना है, श्रेष्ठ योगी, स्वयं में रूहानियत भरनी है, स्वयं को तपस्वी मूर्त बनाना है। हमारी दिनचर्या भोगियों सी ना हो, कोई ये ना कहे यहां भी वैसा जहां वहां बाहर है, कोई ये ना कहे कि आप भी वैसा ही करते हो जैसे वो करते हैं। बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त, अर्थात एक और उदाहरण दिया है ब्रह्मा का, जैसे ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, क्या था, कैसा था? लाइट था, कोई माइट था, कौन आया, कौन सी ज्योति आई, ऐसा आत्माओं का अनुभव हो। बोलती चे अर्णव, जो बोलो वो अमृत हो। तो चौथी लहर कौन सी हुई? चौथा सूत्र, चार लहरों की रेस। रेस किसमें करना है? इसमें करना है, तपस्वी बनने में रेस करना है। महात्मा बुद्ध ने एक जगह बहुत अच्छी चीज कही है, अंग्रेजी में लिखा है एक जगह, आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ एनीवन, आई एम इन कॉम्पिटिशन विथ माई सेल्फ। मैं इस संसार में किसी से प्रतियोगिता नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी के जैसा या किसी से आगे नहीं निकल जाना है। मेरी प्रतियोगिता, मेरी स्पर्धा मेरे अपने से है, मेरे अतीत से है, कल मैं जो था और आज मैं जो हूं इससे है। एवरी टुडे शुड फाइंड यू अहेड ऑफ यस्टरडे एंड एवरी टुमारो शुड फाइंड यू अहेड ऑफ टुडे, ये लक्ष्य हो। तो इन चार लहरों की क्या करनी है? रेस। पांचवा सूत्र 84 का घंटा, ये क्या है? 84 घंटे वाली माँ कौन है? पुरानी दिल्ली से कोई है यहाँ? पुरानी दिल्ली में मंदिर है 84 घंटे वाली माँ का। एक जमीन थी जहां पर एक शिवलिंग मिला था 200-300 साल पहले, और फिर किसी साहूकार ने पैसे दिए, वहां मंदिर खड़ा किया, और जब जब प्रार्थना हुई एक एक घंटा लटकाया, ऐसा करते करते 84 घंटे हो गए। तो आज भी वहां पर है जहां भक्त जाते हैं और एक रस्सी खींचो तो 84 के 84 घंटे एक साथ बजते हैं। पहले वो शिव का था, बाद में हनुमान जी और बाकी सब भी प्रकट हो गए उसमें। तो बाबा ने कहा 84 घंटों वाली माँ। तो 84 का वर्ष है, मुरली नवंबर 1983 की है, 84 वर्ष आने वाला है। तो धूम मचाओ, साक्षात्कार की धूम मचाओ। साक्षात बाप बन जाओ तो साक्षात्कार की चाबी मिलेगी, साक्षात बाप बन जाओ तो दूसरी आत्माओं को साक्षात्कार करा सकोगे। तो धूम मचानी है, किसकी? साक्षात्कार की, अनुभव कराने की। उसके लिए स्वयं अनुभवी बनना पड़ेगा, फिर ही दूसरी आत्माओं को अनुभव हम करा सकेंगे। और जिसको खुद ही अनुभव नहीं, वो दूसरों को क्या बताएंगे कि तुम आत्मा हो? क्या खुद आत्मा का अनुभव किया है? दूसरों को कैसे बताएंगे कि तुम परमात्मा से प्रेम करो? दूसरों को कैसे बताएंगे कि ये वाणी परमात्मा की है? कितना उस वाणी को हमने नस नस में समाया है। किस अधिकार से हम बताएंगे कि भगवान को याद करो? हमने कितना किया? एकांत में जाकर अनुभव करना है, एकांत में जाकर प्रभु प्रेम का अनुभव, हृदय की गहराई में ईश्वरीय प्रेम का अनुभव। इतना याद करो, इतना याद करो, कभी स्लोगन था कि आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। तो 84 का घंटा, छठवा सूत्र है 84 का प्लान। कौन सा प्लान बनाओ 84 में? सबने मुरली सुनी है, कौन सा प्लान बनाओ? कौन सा प्लान बनाओ? कमजोरियों से प्लेन हो जाओ, अर्थात कमजोरियों से मुक्त हो जाओ। स्वयं की कमजोरी, स्वयं के अवगुण, स्वयं की कमजोरी, स्वयं के डिफेक्ट्स, फ्लॉज, इम्परफेक्शंस, खामियां, कोई अवगुण, कोई संस्कार, कोई विकार, कोई विकल्प, कोई व्यर्थ, कोई निगेटिव, कोई दोष, इससे स्वयं स्वयं को मुक्त करना है। बाबा ने एक जगह कहा है, बाबा हरेक का चार्ट जानते हैं परंतु रिगार्ड रखते हैं, बताते नहीं। जिसने जो किया है सब जानते हैं, छिप नहीं सकता उसके दरबार में। माफी मांग लो तो शायद माफ हो जाए, परंतु यदि अब भी छुपा के रखा तो वो बढ़ते जाएगा। एक किताब है अंग्रेजी में, फेथ इज थाई नेम, मर्सी इज थाई नेम। ये किताब एक क्रिश्चियन फादर ने लिखी है, पादरी ने, केन बार्कर। उसमें उसने एक अपने जीवन का संस्मरण लिखा है। उसने लिखा है कि कैलिफोर्निया में एक पादरी था, संडे का दिन था, सारे दिन भर व्यस्त था, अब सोने जा रहा था कि अचानक एक फोन आया रात को 10 बजे। वो फोन एक अस्पताल से था और अस्पताल से एक नर्स बोल रही थी और कह रही थी, फादर क्या आप आ सकते हो, हॉस्पिटल में एक पेशेंट अभी मरने को है, क्या आप आ सकते हो थोड़ी देर के लिए उसके पास, शायद वो आपसे कुछ कह दे, लगता है बहुत दुखी है, अगर इस वक्त वो कुछ कह दे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और वो उस फादर को बुलाती है। तो फादर तो पहले सोचता है कि नहीं जाऊं क्योंकि इतना तूफान और आंधी, बारिश हो रही है, फिर सोचता है ठीक है चला जाता हूं। और वो पहुंचता है और जैसे ही उस पेशेंट को मिलने अंदर जाता है, वो पेशेंट कहता है गो टू हेल, भागो यहां से, नरक में चले जाओ, बिल्कुल मेरे समीप नहीं आना। तो फादर बाहर आ जाते अपमानित होकर। परंतु बारिश हो रही थी, सोचता है थोड़ी देर बैठ जाऊं, तो एक घंटा बैठते हैं, सोचता है एक बार फिर से जाके देखूं इस व्यक्ति को, फिर अंदर जाते हैं, फिर वो व्यक्ति कहता है भाग जाओ यहां से, मैंने बोला ना एक बार मुझे मेरे पास बिल्कुल नहीं आना, और बहुत सारे अपशब्द कहते हैं और भगा देता है। फिर से वो फादर बाहर जाकर बैठते हैं क्योंकि बारिश हो रही है और तूफान है, सोचते हैं थोड़ी देर और रुक जाता हूं, और एक घंटा और रुकते हैं, फिर अंदर जाते हैं, तो फिर वो व्यक्ति कहता है अब थोड़ा शांत हो चुका है, कहता है बैठाने को बैठता है, और वो कहता है मैं मरने के करीब हूं, मैं अपने जीवन की एक बात बताना चाहता हूं। मैं युवा जब था तो रेलवे में वो क्या कहते सिग्नल देने वाला था, और एक बार मैंने बहुत शराब पी ली थी क्रिसमस के दिन, और मैंने गलत सिग्नल दे दिया था, और वो जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई थी, वहां से एक कार थी उस कार से टकरा गई, उस कार में एक मां थी और दो बच्चे थे, और वो तीनों के तीनों ऑन स्पॉट मर गए, और तब से मैं ये भारीपन अपने अंदर लिए हूं। मैंने किसी से नहीं बताया, अविवाहित रहा, पश्चाताप किया, परंतु पुलिस के पास नहीं गया क्योंकि डर था। परंतु आज आपको मैं बताता हूं कि मेरे हाथों से ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, मैं क्या करूं। वो फादर पूछता है मुझे थोड़ा डिटेल्स बताओ, और कौन सा दिन था, कौन सा वर्ष था, कौन सी कार थी, और वो कौन लोग थे जो उस कार में थे। तो वो कहता था ये दिन था, ये वर्ष था, एक मां थी, दो बच्चे थे, और तीनों ही मर गए थे। वो फादर कहता है उस कार में और भी एक छोटा सा बच्चा था, और वो जो छोटा बच्चा था वो बच गया था, और वो बच्चा मैं हूं, और मैंने अपना जीवन ईश्वर को अर्पित किया है, और आज मैं तुमको माफ करता हूं, और जैसे ही वो व्यक्ति ये बात सुनता है चैन की सांस भरता है और शरीर छोड़ता है। तो भगवान के घर में माफी है, छिपाना नहीं है बस। तो छठवां सूत्र कौन सा बताया, 84 का प्लान। फिर है सातवां सूत्र, सातवां सूत्र है परिक्रमा, सेवा की परिक्रमा। दीदी के विषय में चर्चा की बाबा ने कि दीदी क्या कर रही है इस समय, सेवा की परिक्रमा कर रही है। हमें भी हर दिन सेवा की परिक्रमा करनी है, एक स्थान पर बैठे हुए विश्व के हर कोने में जाकर एक एक आत्माओं को इमर्ज कर उन्हें सकाश देनी है, दुखी आत्माओं को सुख की किरणें देनी है, शांति देनी है, पवित्रता देनी है। संसार में आत्माएं विकारों में डूबी है, देह और देह की के भोग के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है। वासना में ही संसार है, भोग में ही संसार है। कितनी महान सेवाएं हमें करनी है और हम क्या कर रहे हैं। जैसे दीदी के लिए बाबा ने कहा दीदी इस समय क्या कर रही है, विश्व की परिक्रमा कर रही है। निमित्त कर्म बंधन है, निमित्त कर्मेंद्रियों के बंधन है, परंतु वो विश्व की परिक्रमा कर रही है। जैसे ब्रह्मा के बाद, जगदम्बा के बाद ब्रह्मा की वो साथी बनी, जगदम्बा के बाद ब्रह्मा के साथ उसने कार्यभार संभाला, अब भी वो सेवा में लगी हुई है। तो हमें भी क्या करना है, विश्व की परिक्रमा, पेरेम्बुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा लगानी है। पांचों तत्व, हर प्रकार की आत्माएं और उन्हें सकाश, वाइब्रेशंस, आत्माओं को वाइब्रेशंस और वायुमंडल चाहिए, शब्द नहीं चाहिए। शब्द बहुत है उनके पास, किताबों से संसार भरा पड़ा है, धरती पर और बोझ है किताबें, चाहिए उन्हें वाइब्रेशंस, वो यहां बैठ कर देने हैं। तो सातवीं पॉइंट है सेवा की परिक्रमा। एट, दीदी के विशेष बोल और संस्कार। तीन संस्कारों की चर्चा की है बाबा ने दीदी के, एक प्लान को प्रैक्टिकल में लाना, दूसरा उमंग उत्साह सेवा में, और तीसरा कंट्रोलर के संस्कार। इनमें से एक संस्कार रहा प्लान को प्रैक्टिकल में लाना, इस पर हर एक को काम करना है। मधुबन में आ गए, मधुबन में बहुत अच्छी प्लानिंग की, परंतु प्रैक्टिकल में वो नहीं आ पाया, क्यों? उस पर सोचना है, क्या करे जो प्लान किया, जो संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, और ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं पहुंच पाया वो प्रैक्टिकल तक? कौन सी बाधाएं थी, कौन से ऑब्स्टेकल्स थे, कौन सी हिंड्रेंसेस, कौन से विघ्न, कौन से संस्कार, क्या था रुकावटी, बॉटलनेक्स, उसको मिटाना है। प्लान और प्रैक्टिकल समीपाय, इस पर काम करना है। तो दीदी के विशेष संस्कार ये तीन थे, और बोल कौन सा था? कुछ नवीनता लाओ और कुछ नवीनता करो, जो कुछ किया है उस पर ही बैठ नहीं जाना है। ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता, धारणा में नवीनता, सेवाओं में नवीनता, जो कुछ भी चिंतन किया उस चिंतन में नवीनता, शब्द शब्द में नवीनता, बोल बोल में नवीनता, हर बात में नवीनता, हर भाव में, हर भावना में, दृष्टि में, कृति में, वृत्ति में, दृष्टिकोण में, स्वप्न में, संकल्प में, चलन में नवीनता। नवीनता की खोज करनी है, मुझे नवीनता लानी है। एक दैवी असंतोष होना चाहिए अंदर ही अंदर, दिव्य असंतोष, डिवाइन डिस्कंटेंट, कि जो कुछ पाया है ये कुछ भी नहीं है, अभी और आगे है, और आगे, और आगे, ये तो केवल रास्तों के पत्थर है, उंगली खाली दिखाई है, चांद कहाँ है? तो वो है, परंतु ये उंगली चांद नहीं, इसको ही पकड़ के नहीं बैठ जाना। रास्ता, मंजिल, गंतव्य बहुत आगे है, नवीनता। तो ये था आठवां। यहां मुरलीपुरी होती है, फिर मीटिंग्स में तीन, नौवां मीटिंग। मीटिंग का लक्ष्य क्या है? नौवां सूत्र मीटिंग, विश्व को बाप के समीप लाना, संदेश देना नहीं। कितनी अच्छी बात कही है, मीटिंग का संदेश केवल मीडिया की सेवा और आत्माओं को संदेश देना नहीं है, परंतु आत्माओं को भगवान के समीप लाना, एक एक हृदय में परमात्मा प्रेम प्रकट करना, एक एक हृदय की, एक एक आत्मा की छाती में परमात्मा प्रेम का त्रिशूल गाड़ देना, चाहे वो कोई भी हो, आदिवासी, वेश्याए, दलित, सबके हृदय में प्रभु प्रेम उत्पन्न हो जाए, ये लक्ष्य है मीटिंग का। मीटिंग दसवां है शक्ति रूपा मां बनना, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की। शक्तियों का गायन मां के रूप में है, तो जैसे मां पालना करती है, जैसे उस लेखक ने बताया मेरी मां के ये आठ झूठ है, क्यों बोल रही है वो मां झूठ, क्यों सहन कर रही है, क्योंकि उसे पालना करनी है, क्योंकि उसका प्यार है। द हाइएस्ट सैक्रिफाइस, द हाइएस्ट टेस्ट ऑफ लव इज टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड, जिससे प्यार है उसके प्रति जीवन को अर्पण कर देना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो दसवां है शक्ति रूपा मां। ग्यारहवां है ईश्वरीय भासना के बीज बोना। क्या करो? ईश्वरीय भासना के बीज बोना है। तुम्हारी वाणी से अलौकिक शक्ति का अनुभव हो। फिर से वही बात है, यहां पर दोहराई है बाबा ने, आत्माओं को अनुभव कराओ। न्यारापन और अनन्य, तुम अनन्य हो। अनन्य की परिभाषा जो अन्य कोई कर ना सके, अनन्य की परिभाषा बाप समान सैंपल, न्यारेपन की परिभाषा वाणी में अलौकिक शक्ति का अनुभव, आत्माओं को हो, भासनाएं अनुभव हो, साक्षात्कार हो, वो कहे हाँ ये वही है जिनका हमें इंतजार था, हाँ ये वही है जिनका हम आह्वान कर रहे थे, शिव शक्ति आ गई धरती पर, ये अनुभव हो, हमने देखा, हमने पाया, ये अनुभव हो। भासना के बीज बो दो, हृदय की भूमि पर। बारहवा डबल विदेशियों से मुलाकात, साइट सीन्स। पांच चीजें करनी है साइट सीन में। जीवन में जब जब साइट सीन आ जाए तो क्या क्या करना है बताओ, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या ड्रामा समझ, साक्षी ड्रामा ये सब नहीं है, आज का बताओ। वो लास्ट संडे में था, टॉप की स्थिति, टॉप का स्थान, टॉप का पॉइंट, टॉप की सेवा, टॉप बाप की याद और योग। वो लास्ट संडे था साक्षी, आज क्या है? साइड सीन आते हैं तो क्या करो? ऊंची स्थिति सबसे पहले कहा, घबराना नहीं, पहली बात तो दिल शिकस्त नहीं होना, और खुशी और याद से इसे पार करना और ऊंचे स्थान पर चले जाना, क्योंकि जब तुम ऊंचे स्थान पर होते हो तो नीचे की चीजें छोटी हो जाती है। नीचे की चीजों को कुछ करना नहीं है, उनको पकड़ के नीचे छोटा नहीं करना है। जैसे अकबर ने कभी एक अब दरबार में एक प्रश्न पूछा, एक लाइन खींची जमीन पर और दरबारियों से कहा कि बिना इस लाइन को टच किए इसको छोटा करके दिखाओ। अब कैसे करेंगे कोई, सब लोग सोच में पड़ गए, बिना लाइन को टच किए, बिना उसको रबर से मिटाए कैसे लाइन को छोटे किया जाए। बीरबल आया और बड़ी लाइन खींच दी उसके आगे, तो जब बड़ी लाइन हो गई तो अपने आप वो छोटी हो गई। जब बड़ी स्थिति में चले जाओ तो परिस्थिति नीचे रह जाएगी अपने आप, तो ऊपर चले जाओ। तो ऊंची स्थिति, फिर बीती बातों का चिंतन नहीं, बीती बातों का स्मरण नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब उसके लिए पश्चाताप नहीं। सीख लेना उससे, पाठ पढ़ लेना उससे, जो भी हुआ जीवन में अब तक पाठ पढ़ लिया, आगे बढ़ो। पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा ने कभी कहा है। पश्चाताप करो जरूर, पर दिन रात नहीं करते रहो। इसको पैटर्न नहीं बना दो, इसको रीति रसम नहीं बना दो। 72 की अव्यक्त मुरली, पाप ट्रिपल पी, पाप करना, पश्चाताप करना, पार्डन, इसको रीति रसम नहीं बना देना ब्राह्मण जीवन का। तो क्या करना है, ऊंची स्थिति में रहना है, घबराना नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना, खुशी से पार करना, खुशी के झूले में झूलना। 13वीं पॉइंट, अमृत वेला। अमृत वेला नींद थकावट सुस्ती का इलाज बाबा ने बताया है, दो चीजें। एक, सारे दिन भर ज्ञान का मनन करते रहना, जो मनन किया हुआ खजाना है वो फिर दूसरे दिन सामने आएगा तो खुशी होगी और फिर थकावट नहीं होगी, प्राप्तियों की खान तुम्हें मिली है। उस ज्ञान का सारे दिन भर मनन करना, डायरेक्ट उस समय मनन करते हो तो बुद्धि फ्रेश नहीं होती है, इसलिए सारे दिन भर मनन चलता रहे, एक। और दूसरा श्रीमत, सारे दिन भर श्रीमत पर यदि है तो क्या होगा, दूसरे दिन अमृत वेला शक्तिशाली होगा। तो यह है 13वीं पॉइंट। और लास्ट पॉइंट 14वीं, आज के मुरली के वरदान से, पावरफुल माइंड। पावरफुल माइंड किसको कहा बाबा ने, पावरफुल मन। चाहे शरीर में कुछ भी होता है, कलयुग है, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, कमजोरी आएगी, बीमारी आएगी, पर इसका मतलब नहीं जब कमजोरी है और बीमारी है तो दुखी होकर बैठ जाओ। मन उमंग उत्साह में रहे, मन दुरुस्त रहे, शक्तिशाली माइंड अर्थात जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाए, उसके लिए क्या करो, सारे दिन भर मन में बुद्धि में क्या लाओ, भाग्य की बातें, क्या लाओ, प्राप्तियां, क्या क्या मिला है। अमृत वेले से चालू करो गीत गाना, भाग्य के बातों को लाओ, गीत गाओ और खुशी में रहो। तो ऐसी ये टोटल 14 बातें हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, इस मीटिंग का सबसे पहला सूत्र त्रिशूल, त्रिशूल को याद रखना। दूसरा सूत्र, इसके बाद जब भी साकार मुरली सुनते समय तीन बातें सामने आती है तो उनको अलग से डायरी में नोट करते जाओ, तीन तीन बातें, तीन तीन बातें, तीन तीन बातें, डायरी के पीछे जो भी तीन बातें आती जाएगी उसको पीछे नोट करते जाना। तो पहला त्रिशूल, दूसरा लहर, पांच प्रकार की लहर में मैं कहां हूं, तीसरा आंख, पहचान की आंख खोलनी, आत्माओं को अनुभव कराना है, चौथा चार लहरों की रेस करनी है। पांचवा घंटा, 84 का घंटा, वो माता का उदाहरण दिया, तो यहां पर साक्षात बाप समान बनना है। छठवा 84 का प्लान, प्लान है कमजोरियों को मिटाना। सेवेंथ विश्व के परिक्रमा करनी है, सेवा की परिक्रमा। एट संस्कार, दीदी का विशेष संस्कार और विशेष बोल, विशेष बोल था कुछ नवीनता लाओ, संस्कार था उमंग उत्साह में लाना दूसरों को, संस्कार था प्लान प्रैक्टिकल को समान करना, संस्कार था कंट्रोलिंग पावर। बाबा ने कहा वहां जाकर भी क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, एडवांस पार्टी की भी कंट्रोलर है। तो एट, नाइन्थ है मीटिंग, मीटिंग का लक्ष्य क्या है, विश्व को बाप के समीप लाना। टेंथ मां, शक्ति रूप मां बनना है और आत्माओं की पालना करनी है। इलेवेंथ बीज, भासना का बीज बोना है। ट्वेल्थ साइट सीन्स, जो भी जीवन में आ रहा है विघ्न परिस्थितियां सब साइट सीन्स है, घबराना नहीं है, ऊंची स्थिति में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, जो हो गया उसको भूलते जाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, याद और खुशी से पार करना है। अगला अमृत वेला, बाबा ने कहा बाबा विशेष पात्र को अमृत वेला टच करेंगे, फिर विदेशियों ने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर फिर बाबा ने दिया कि सारे दिन भर मनन होता रहे और श्रीमत पर चलते रहो, और लास्ट पावरफुल माइंड। ऐसे कैसे कैसे ऐसे ऐसे त्रिशूल आत्मा है ऐसे महातपस्वी मूर्त आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ योगी आत्माओं को, ऐसे साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त आत्माओं को, ऐसे विश्व में सेवा में विश्व की सेवा में मगन आत्माओं को, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।